بین الاقوامی طلبہ کے مسائل پر پوڈ کاسٹ سلسلے کی اس کے ساتھ میں ہوں ریحان الوی۔
جی السلام علیکم، میرا نام ماریہ بانو ہے اور میں اس ٹائم میلبرن میں ہوں اور میں یہاں پہ جاب کر رہی ہوں ایز این انڈسٹریل فارماسسٹ۔
ماریہ، یہ شیئر کیجیے گا کہ آپ نے تسمانیہ آنے کا ارادہ کب کیا؟
تسمانیہ آنے کا ارادہ میرا تب ہی ہوا جب میں سوچ رہی تھی کہ مجھے آسٹریلیا میں ہائر ایجوکیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے جن یونیورسٹیز کو سرچ کیا اور میں نے اپنے سبجیکٹ آف انٹرسٹ کو دیکھنے کی کوشش کی، ون واز یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلس، وہاں ماسٹرز ان فورینسک سائنسز تھا اور یہاں پہ ماسٹرز ان فارماسیوٹیکل سائنسز تھا۔ فارمیسی کی طرف میرا تھوڑا زیادہ میں انکلائنڈ تھی بیکاز اٹس اے سبجیکٹ آف انٹرسٹ، میں نے سوچا کہ مجھے یونیورسٹی آف تسمانیہ میں جانا چاہیے۔ دوسرا ایڈوانٹیج اس کا یہ بھی تھا کہ مجھے تو میرے کنسلٹنٹ تھے، انہوں نے بولا تھا کہ کیونکہ یہ ریجنل ایریا میں بھی آتا ہے اس کا آپ کو فیوچر میں فائدہ بھی ہوگا، سو اس طرح سے میں یونیورسٹی آف تسمانیہ میں چلی گئی۔
COVID-19 کے دوران بہت سے لوگ پریشانی کا شکار رہے، مگر آپ نے جس طریقے سے اپنا کیریئر بلڈ اپ کیا، آنے والے دنوں کے لیے خود کو تیار کیا، ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ جب COVID-19 آیا اس وقت آپ کی پڑھائی کی، پی آر کی اور جاب کی سچویشن کیا تھی؟
جب میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی ارلی 2019 میں، تب میں نے اپنی جابس دیکھنا اسٹارٹ کی اینڈ آئی واز ویری شیور کہ مجھے اپنے فیلڈ کی ہی جاب کرنی ہے، مجھے پروفیشنل ہی جاب کرنی ہے، کیونکہ میری ڈگری کی جو ریکوائرمنٹ تھی پی آر کے سلسلے میں وہ یہ تھی کہ مجھے ایک سال کا ایکسپیرینس چاہیے تھا اپنی فیلڈ میں کے لیے، ڈگری کے اسکل اسیسمنٹ کروانے کے لیے۔ اس سلسلے میں آئی واز ویری فوکسڈ ان دیٹ اسپیکٹ اور میں نے مارکیٹ دیکھی کہ کون کون سے ریلیٹڈ فیلڈس بنتی ہیں میری فارماسیوٹیکل فیلڈ کو لے کے، کیونکہ میں نے ریسرچ ورک بھی کیا ہوا تھا، میرا کیمسٹری بیک گراؤنڈ بھی تھا۔ اس ٹائم پہ میری ڈگری پی آر لسٹ پہ نہیں تھی بٹ میں نے ریجنل سے پڑھا تھا، سو اگر مجھے ایک سال کا ایکسپیرینس مل جاتا اپنی فیلڈ میں سو آئی واز کوائٹ ایلیجیبل ٹو گیٹ پی آر۔ تسمانیہ میں بھی کافی جگہ پہ اپلائی کرنے کی کوشش کی وہاں کی فارمیسیز میں، بٹ انفارچونیٹلی مجھے 3-4 مہینے تک کوئی جاب نہیں ملی اور مجھے کال بھی نہیں آئی۔ میں نے کوشش کی بات ہے تو آپ یقین کریں آن لائن تو بندہ اپلائی کرتا ہی ہے، بٹ میں فزیکلی جاتی تھی اور میں فزیکلی اپنی وہاں کے مینیجرز، جہاں جہاں میں نے جاب سرچ کرنی ہوتی تھی، فار ایگزامپل فارمیسیز ہیں، وہاں پہ جا کے وہاں کے مینیجر کو ڈائریکٹلی ملنا، اس کو اپنی سی وی دینا، اس کو بولنا کہ اف دیئر از اے ویکینسی پلیز ڈو لیٹ می نو۔ سو مجھے کسی نے بہت اچھا مشورہ دیا تھا کہ آپ جس جگہ پہ اپلائی کر رہی ہیں آپ اسی جگہ کا ایڈریس شو کریں۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے پھر تسمانیہ میں رہنا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ مجھے یہاں پہ چاہیے یہاں پہ چاہیے، میں نے اپنا فوکس یہ رکھا کہ مجھے اپنی فیلڈ میں جاب کرنی ہے۔ پھر میلبرن میں فارماسیوٹیکل کمپنیز کو میں نے سرچ کیا، وہاں کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد ایک فارماسیوٹیکل کمپنی سے کال آئی اور انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے کال کی، بلکہ انفیکٹ انہوں نے مجھے کہا شام کو آ جاؤ انٹرویو کے لیے، تو میں نے کہا میں آج تو نہیں آ سکتی، میں کل آ جاؤں گی۔ پھر میں نے ٹریول کیا اور پھر میں انٹرویو کے لیے گئی اور اس طریقے سے میری جاب ہوئی۔ بس وہ میرا بھی ایک سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، کووڈ کی سچویشن اسٹارٹ ہو گئی، لیکن فارچونیٹلی کیونکہ یہ مینوفیکچرنگ تھی، سنس ہماری جو کمپنی ہے وہ انویسٹیگیشنل میڈیسنس پہ کام کرتی ہے، جو وہ مارکیٹ جو کمرشلائز نہیں ہوئی اور جو کلینیکل فیز میں ہیں، جو اسٹڈی فیز میں ہوتی ہیں، اس کو ہم لوگ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آلریڈی کچھ میڈیسنس کے اوپر کام ہو رہا تھا جو کہ کووڈ کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن ایز سون ایز کووڈ آیا تو وہ جن سمٹمس کو کے لیے وہ بن رہی تھیں اس کے بعد انہوں نے سڈنلی وہ شفٹ کر دی کووڈ اسٹڈیز کے لیے۔ COVID-19 کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ افیکٹ ہوئے پر مجھے افیکٹ نہیں ہوا، کیونکہ میرا جو فیلڈ تھا وہ کریٹیکل سیکٹر میں آ رہا تھا اور فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ساری کی ساری تھیں آبویسلی دے ہے وہ ساری کی ساری کام کر رہی تھیں اور وہ ایک دن کے لیے بھی کلوز نہیں ہوئیں الحمدللہ۔ اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو I was quite lucky in that sense۔
جو لوگ آسٹریلیا آ گئے ہیں یا آنا چاہتے ہیں اور اپنی فیلڈ میں ان کو جاب نہیں مل رہی ہے، ان کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی کہ وہ کس طریقے سے فیوچر کی پلاننگ کریں؟
لوگ آسٹریلیا آ رہے ہیں ان کے لیے تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ ڈونٹ فالو دا فلوک، لائک جہاں پہ وہ سب لوگ بھاگ رہے ہیں، سب لوگ جو آسٹریلیا نہیں آیا تو وہ سب لوگ وہاں پہ ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اینڈ دے آر مور فوکس کہ اچھا اس سبجیکٹ میں پی آر ہے تو وہاں پہ جا رہے ہیں، اس سبجیکٹ میں ہے تو وہاں پہ جا رہے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں اپنے ساتھ جب میں یہاں پہ آئی تھی तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स थे वो हर टाइम यही डिस्कशन करते रहते थे कि इसमें पीआर नहीं है, हमें यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें सब्जेक्ट शिफ्ट कर लेना चाहिए। उसमें बहुत से लोग मैंने देखे जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अपने सब्जेक्ट चेंज करिए, और यकीन करें वो साइंस सब्जेक्ट छोड़ के टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स में चले गए। उनमें से कुछ की पीआर हुई, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा और उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगानी पड़ी। तो जहाँ तक मेरी बात थी, एट दैट टाइम पीआर लिस्ट पे नहीं थी मेरी डिग्री। इनफैक्ट जो मैंने पीछे से पढ़ के आई थी केमिस्ट्री में, वो भी पीआर लिस्ट पे नहीं थी। बट आई वॉज क्वाइट श्योर कि मैं अच्छे तरीके से अगर पढ़ूंगी तो कोई ना कोई तरीका, कोई ना कुछ, कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। तो मैंने इसी को फोकस में रखा, इसी को मैं करती रही। आने से पहले भी मुझे पता था कि जो साइंस है, जॉब मार्केट साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें कंपटीशन काफ़ी कम होता है। ज़्यादातर लोग जो है ना वो दूसरे सब्जेक्ट्स में जाते हैं, लाइक अकाउंटिंग, हॉस्पिटलिटी, आईटी, लेकिन इसमें कम होता है। और जब कम होता है तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाए। मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे केसेस देखे बहुत। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेशन चाहिए इस सिलसिले में, सेकेंडली आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए विद द रिजेक्शंस, थर्डली जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट में जो एम्प्लॉयर है वो क्या आप में देखना चाह रहा है, आपको अपना इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है। इस सिलसिले में अगर आप ऑनलाइन जाएं या रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वहाँ पे भी ये लोग हेल्प कर देते हैं कि आपको प्रिपेयर करने में, कि इंटरव्यू में आप कैसे अपने आप आपकी अपना आपको स्किलफुल शो कर सकते हैं, या उनको बता सकते हैं कि अच्छा इंटरव्यू आप जो है ना वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपको हेल्प करेंगी आपको अपनी फील्ड में जॉब लेने के लिए।
ऑस्ट्रेलिया जब आप आई, आप बिल्कुल अकेली थी एक लड़की के तौर पे, और तस्मानिया जैसी रियासत में आप गई जहाँ बहुत कम आबादी है, वहाँ कैसा आपको माहौल मिला?
तस्मानिया में मैं जब गई थी तो मैं अकेली थी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी तो मैंने शुरू का टाइम जो था ना वो अपने फैमिली के साथ स्पेंड किया था, और मेरी फैमिली जो है वो सिडनी में थी और वहाँ पे ही हमारे फैमिली फ्रेंड्स और सारा सर्कल सारा कुछ था। तस्मानिया में मैं किसी को जानती नहीं थी, इनफैक्ट मेरी फैमिली में से भी कोई किसी को नहीं जानता कि तस्मानिया में कोई किसी को जानता हो। लेकिन ओवरऑल जो लोगों से सुना था कि उन्होंने के एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है, मल्टीकल्चरल नहीं है, और मुझे रेसिज्म भी फेस करना पड़ सकता है, इस तरह की चीज़ें थी। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड के पता नहीं मुझे जाके कैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। और लेकिन खैर मैं चली गई, लेकिन मेरे साथ बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। जब जिस दिन मैं तस्मानिया जा रही थी, मैं अकेली जा रही थी और मैं वहाँ पे किसी को जानती नहीं थी, अगले दिन मेरी ऑरिएंटेशन थी, और सिडनी में बैठ के मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि मुझे अकोमोडेशन का मैं कुछ कर लूँ, लेकिन क्योंकि लोग ऐसे आपको अकोमोडेशन ऑफर नहीं करते, दे वॉन्ट टू मीट यू। वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड थी पाकिस्तान से जो अभी तस्मानिया शिफ्ट हुई थी, तो है वो पहले 12 साल मेलबर्न में रह के गई थी। सो मैंने उससे कॉन्टेक्ट किया, शी वॉज ऑल्सो वेरी न्यू तो मुझे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन बनी हुई थी उसके चेयरमैन थे, या मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि इस तरह से मैं आ रही हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ और मुझे गाइडेंस चाहिए होगी अकोमोडेशन के सिलसिले में और वैसे भी जनरली भी। सैयद उर्फी उनकी फैमिली थी वहाँ पे यूनिवर्सिटी तस्मानिया में, वो बिजनेस स्कूल में पढ़ाते थे, उनके साथ मैंने शुरू में स्टे किया था। इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लाइक वहाँ पे जितना मैंने पढ़ा मुझे लगता है वो सारे सबको एक तरफ कर दो, ये 2 साल की जो मेरी एजुकेशन है उसको एक साइड पे कर दो। मुझे काफ़ी पढ़ना पड़ा। स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपनी एजुकेशन को या और साथ में वो जॉब भी कर रहते हैं, वो एजुकेशन भी कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे शुरू में आई थी, मैंने जैसे बताया कि वो डॉक्टर सैयद उर्फी थे, उन्होंने मुझे एक बात उस टाइम पे कही थी, तो मुझे रास्ते में कहते हैं बेटा मेरी एक बात याद रखना, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हो, अगर आप सही से पढ़ लोगी ना आप बहुत ज़्यादा कामयाब होगी। आप तो उन्होंने कहा कि ये आपको एक दिन पे ऑफ करेगा, आप जो भी कर रही हो आप ये मत सोचो, आप पीआर, यहाँ पे लोग आते हैं वो पीआर का सोचते हैं। मैंने उनके उनकी ये एडवाइस मैंने अपने मैंने पकड़ ली, मैंने ले ली उनसे ये एडवाइस। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ती थी सुबह से लेके रात तक। और एक और बात, जब मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी एज अ स्टूडेंट आई थी तो यूनिवर्सिटी ने मुझे 25% स्कॉलरशिप दिया था मेरे एकेडमिक स्कोर जो प्रीवियसली था, मुझे वो स्कॉलरशिप मेंटेन करना था, तो मैंने वो मेंटेन किया थ्रू आउट माय स्टडीज। मेरे साथ स्टूडेंट्स थे जिनको स्कॉलरशिप मिला, उन्होंने साथ जॉब्स की लेकिन वो स्कॉलरशिप मेंटेन नहीं कर सके, लेकिन मैंने कुछ भी लूज नहीं किया क्योंकि मैं जितना स्कॉलरशिप मेंटेन करके सेव करती थी वो लोग जॉब से उतना कमाते थे। सो आई थिंक मैं ज्यादा फायदे में रही क्योंकि मैंने पढ़ाई पे फोकस किया. पैसे तो मेरे सेव हो गए स्कॉलरशिप से कि मुझे इनकी जॉब मार्केट में कैसे इन होना है. और कोई मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत मुश्किल है, यू कांट सर्वाइव एंड ऑल दैट. ठीक है, ऑस्ट्रेलियन वर्क एनवायरनमेंट एंड ऑस्ट्रेलियन स्टडीज ऑब्वियसली मेक यू स्टैंड आउट अगर आप सिंसेयरली इसके ऊपर काम करें और अपना फोकस रखें. और इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग यू विल अचीव डेफिनेटली.
बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया. मेरा नाम मुजम्मल हफीज है और मैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ और एप्टीट्यूड माइग्रेशन में यहाँ सिडनी में. और इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में भी ऑफिसेज हैं. हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और साथ में जो लोग भी वीज़ा से रिलेटेड, किसी भी किस्म के वीज़ा से रिलेटेड जो भी मामलात हों उनमें लोगों को असिस्ट करते हैं.
यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, आपके ख्याल में उनका इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है?
जी, मेरे ख्याल में जो लोग यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ख़ास तौर पे जो मास्टर्स डिग्री करने आए हुए हैं या जो बैचलर्स डिग्री भी कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा इशू उनके लिए है वो ये है कि वो अपनी फील्ड की जॉब ना ढूंढते हैं, ना करते हैं, या कभी उनको नहीं मिलती जो लोग बहुत ज़्यादा ट्राई भी करें. तो इसका जो हल है वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडस्ट्री के साथ लोगों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपकी फील्ड में, ताकि आपको जॉब मिल सके. तो इसी तरीके से ठीक है, जो लोग आते हैं नए उनको काम का भी प्रॉब्लम रहता है. आजकल गवर्नमेंट ने फुल टाइम वर्क अलाउ कर दिया है, लेकिन फुल टाइम वर्क के साथ साथ मेरे ख्याल में लोगों को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी फील्ड में अगर फुल टाइम काम करें तो वो उनको इमिग्रेशन के प्रोसेस में, पीआर लेने के प्रोसेस में भी फ़ायदा देगा. तो हमारे पाकिस्तानियों का जो मेन प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हम लोग और जॉब्स कर रहे हैं बट हम अपनी फील्ड की जॉब पे फोकस नहीं कर रहे, जिससे हमें कैरियर अच्छा बन सकता है. और कैरियर बनेगा तो जाहिर आपको पीआर भी मिल जाएगी बट देन आपकी लाइफ भी सेटल हो जाएगी.
और जो स्टूडेंट पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं उनको किस किस्म की तैयारी करके आना चाहिए? और
आजकल हम भी पाकिस्तान में इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं. जो एक पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं और आके जो है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेती है, तो उनको बेसिकली यहाँ पे आने के बाद कोई साल दो साल लग जाते हैं ये जानने के लिए कि एक्चुअल में उनको करना क्या है. तो उनको बेसिकली पाकिस्तान से ही रिसर्च करने की ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी के ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया जो है इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उनसे उनकी फील्ड से रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और वो कहाँ कहाँ पे हैं. आप खाली सिडनी या मेलबर्न को टारगेट नहीं करें, जहाँ पे आपका रोज़गार या आपकी फील्ड से रिलेटेड काम अवेलेबल है आप उस एरिया को टारगेट करें, उस एरिया में नेटवर्किंग करने की कोशिश करें.
इंटरनेशनल तलबा ऑस्ट्रेलिया आकर किस तरह के मसाइल का शिकार होते हैं और उनसे किस तरह निपटा जा सकता है, इस बातचीत की सीरीज में हम मुख्तलिफ माहिरीन और तजुर्बेकार लोगों से बातचीत कर रहे हैं. इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सैयद फजले हसन से मालूमाती गुफ्तगु सुनते हैं.
आप जब प्लान्ड वे में यहाँ नहीं आते हैं बल्कि आपके जहन में ये होता है कि वहाँ पे जो हालात होंगे वो देखे जाएंगे, तो वो फिर हालात वही होते हैं जो आपसे देखे नहीं जाते. तो सबसे बेहतर ये है कि आप इसको बड़े उम्दगी के साथ प्लान करके आएँ. तो प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. दूसरा ये कि अपने जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो एक दफ़ा आपको ज़रूरी है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स से आप आइडियाज़ ले लें कि जिस कोर्स को आप या जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन आपने लिया है उसके कन्वेंशंस क्या हैं. देखिए, पाकिस्तान वगैरह में एक एग्ज़ामिनेशन का एक अपना सिलसिला होता है और आप वो पढ़ लेते हैं और आके एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपके लिए 1500 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स, 4000 वर्ड डिपेंडिंग ऑन कि क्या उसकी वेटेज है, उस लेवल की असाइनमेंट्स होती हैं जो आपको इंग्लिश में लिखनी होती हैं और उन असाइनमेंट्स की बुनियाद पे आपका स्कोर होता है. अब दुश्वारी ये होती है कि हमारे यहाँ क्योंकि इंग्लिश राइटिंग बहुत रेयर है तो हम सबसे ज़्यादा डिप्रेस यहाँ पे आके उस वक्त होते हैं जब हमारे यूनिवर्सिटी के पहले ही सेमेस्टर में हमारे चार में से तीन यूनिट्स में खसूसे साथ कोविड के बाद सारा काम लिखने का शुरू हो जाता है और हमारी इसमें तो बिल्कुल भी. और बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर हम फ़र्ज़ कीजिए जॉब कर रहे हैं तो लिखने के लिए क्योंकि कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वो कंसिस्टेंसी भी हमारे यहाँ मफकूद होती है. तो उसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं. एक तो ये कि ज़ाहिर है कि हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें हम سوشل میڈیا پہ بیٹھنے کی وجہ سے ہمارا اٹینشن اسپین کم ہو چکا ہے، ہمیں علم ہے اس بات کا، اور وہاں پاکستان کی ڈائنمکس ایک ڈفرینٹ ڈائنمکس ہیں، ہر روز ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو رسپونڈ کرنے میں سسٹم کوئی نہ ہونے کی وجہ سے بہت بعض اوقات دشواریاں ہوتی ہیں. مگر دیکھیے یہ اگر چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں تو اس میں ایک پازیٹیو بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ جو ہم لوگ ہیں کیونکہ ہمارے سسٹم کوئی نہیں ہے تو ہم جو ڈیویشنز ہیں ان کو کوپ اپ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی وجہ سے ہماری انالیٹیکل سکلز بہت مضبوط ہو جاتی ہیں، ہماری سنتھسز بہت مضبوط ہوتی ہے، ہم آؤٹ آف دا باکس سوچنے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو یہ کمال کی سکلز ہوتی ہیں، کرائسس میں ہم آؤٹ اسٹینڈنگلی پرفارم کرتے ہیں.
یہ تھے ڈاکٹر سید فضل حسن، جو آسٹریلیا کی مختلف یونیورسٹیز میں اکیڈمکس اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے مختلف شعبوں میں کام کرتے رہے ہیں، اور انہی سے ابھی آپ طلبہ کے لیے مشوروں پر مبنی معلوماتی گفتگو کا آخری حصہ سن رہے تھے.